This is Vivek Kumar in BA Part 2, Faculty of Social Sciences. Now, the next chapter, that is chapter number 3, Bharatiya Samaj Ka Utkarsh, Chunauti, Virodh, Pratirodh aur Parivartan. Pragaitihasik Samaj. भारतीय समाज के उत्कर्ष का इतिहास प्रागैतिहासिक युग से प्रारंभ होता है, जब आदिम मानव अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। यह सही है कि उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिणी भारत आदिम सभ्यता के प्रभाव में अधिक समय तक रहा तथा उत्तरी भारत में तब ऐतिहासिक साम्राज्य का निर्माण हो चुका था तथा आदिम समाज नवीन आयाम पाने लगा था। उत्तरी भारत के कतिपय गुफा चित्र प्रागैतिहासिक मानव का स्मरण दिलाते हैं। यद्यपि दक्षिण भारत के गुफा चित्र भी प्राचीन हैं, किंतु उनके निश्चित समय के विषय में कहना संभव नहीं। भारतीय प्रागैतिहासिक मनुष्य के औजार विश्व के अन्य प्रागैतिहासिक देशों के मनुष्यों के औजारों की भांति पत्थर के थे, जो लेवालवा आधार पर तराशे गए थे। पत्थर के औजार बनाने की यह दूसरी पद्धति थी, जिसका काल प्रायः 50,000 से 1,00,000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस प्रकार के औजार समस्त यूरोप और एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। वस्तुतः पूर्व प्रस्तर युग के अवशेष भारत में प्रायः कम ही हैं। दक्षिणी पठार और द्रविड़ प्रदेश में लघु पाषाण संस्कृति के काल के अवशेष प्रधान रूप से पाए जाते हैं, जो भूगर्भ विज्ञान के आधार पर भारत के प्राचीनतम भाग हैं। मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, बम्बई आदि प्रदेशों में भी उस युग के अवशेष मिलते हैं, जो लघु पाषाण संस्कृति से संबद्ध हैं। वैसे यह संस्कृति प्रायः दक्षिणी पूर्वी तट पर बालू के ढूहों में है, जो 4000 ईसा पूर्व या इससे भी अधिक प्राचीन है। इनके पत्थर के छोटे छोटे औजार नदियों के किनारे अधिकता से प्राप्त होते हैं, जिन्हें मछलियों आदि के मारने में प्रयुक्त किया जाता था। लेकिन तत्कालीन समाज में ऐसे भी लोग थे जो विशालकाय चट्टानों और पत्थरों पर चित्र बनाते थे। कभी कभी ये बड़ी बड़ी चट्टानें एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाकर चित्रांकित की जाती थी। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि प्रदेशों में ऐसे ही महापाषाण से संबंधित लोग थे, जो बड़ी बड़ी शिलाओं पर विविध चित्रों के अतिरिक्त प्रअस्तर के विभिन्न औजार भी बनाते थे। ब्रह्मागिरी से प्राप्त प्रअस्तर कुल्हाड़ी पाषाणकालीन जीवन पर प्रकाश डालती है। लघु पाषाण मानव और महापाषाण मानव भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी आदि नदियों के किनारे भ्रमण किया करते थे और जीवन की आवश्यक वस्तुओं की खोज में लगे रहते थे। ऐसा लगता है वे लोग शवों का अंतिम दाह संस्कार भी किया करते थे। त्रितवल्ली जिले के आदि चन्नलूर नामक स्थान पर ताम्रपर्णी नदी के किनारे 114 एकड़ भूमि क्षेत्र के विशाल शमशान स्थल का पता चला है, जिसमें 1000 गड़े हुए घड़े भी मिले हैं। आंध्र राज्य में स्थित गुंडला ब्रह्मेश्वरम तथा नदी कर्णम घाटी में लघु पाषाण मानव के अवशेष मिलते हैं। इस प्रकार की सभ्यता की पुष्टि उत्तर भारत में मिर्जापुर नामक स्थान से प्राप्त एक समाधि में मिट्टी के रोगनदार बर्तन और कांच के टुकड़ों के साथ एक युवक की अस्थि से भी होती है। पाकिस्तान में सिंध, तक्षशिला, रावलपिंडी और भारत में कश्मीर, गुजरात, मध्य भारत, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि विभिन्न प्रदेशों के अनेक स्थानों पर इस प्रकार के लघु पाषाण मानव के औजार और अवशेष मिले हैं, जो उनके विस्तार को दर्शाते हैं। पाषाण युग के पश्चात धातु युग का प्रारंभ माना जाता है। भारत के उत्तरी भाग में ताम्र पाषाण का प्रारंभ हुआ और दक्षिणी भाग में लौह युग का। यद्यपि लौह युग से पहले कांस्य युग का विकास हो चुका था, किंतु उसका पता नहीं चलता। ताम्र धातु से निर्मित औजारों का सर्वाधिक भंडार मध्य भारत के गुंगेरिया नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इन तांबे के औजारों की संख्या 424 है, जो यूरोप में आयरलैंड से मिले औजारों से साम्य रखते हैं। इनका समय प्रायः 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। वैसे ताम्रयुगीन तांबे के धारदार अस्त्र भारत के मथुरा, फतेहगढ़, कानपुर, मैनपुरी नामक विभिन्न स्थानों पर मिले हैं। इस आदिम सभ्यता के लोग पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में हुगली नदी तक और उत्तर में हिमालय की तराई से गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान तक फैले हुए थे। लौह औजारों का सर्वप्रथम उपयोग दक्षिण की अपेक्षा उत्तर भारत के लोगों ने पहले किया था। इसी प्रकार बावेरू में लोहे का व्यवहार पहले हुआ और मिस्र में बाद में। वैसे भारतीयों द्वारा लौह औजारों के प्रयोग का उल्लेख ग्रीक लेखकों ने भी किया है। भारत में लोहे का प्रचलन प्रायः 1000 ईसा पूर्व के लगभग प्रारंभ हो गया था। अथर्ववेद और अजुर्वेद में भी इसका उल्लेख हुआ है। इसका प्रमाण मिलता है कि आर्यों के तांबे और पत्थर के अस्त्र थे। इस प्रकार प्रागैतिहासिक युग में लोगों ने समयानुसार प्राकृतिक चुनौतियों का स्वीकार किया तथा अपनी आवश्यकता अनुसार अपने समाज का क्रमिक उत्कर्ष किया। वे अपने तथा अपने पशुओं के आहार और उसके उत्पादन को ध्यान में रखकर अन्य प्रदेशों की ओर अग्रसर हुए। फलतः समाज के विस्तार के साथ साथ जनवृद्धि भी हुई। विभिन्न कबीलों ने अपने अपने हित और आवश्यकता को देखकर अपना अपना विकास किया। पशुपालन और कृषि कार्य की ओर उनका अधिकाधिक झुकाव हुआ, जिससे अनेक आहार उत्पादन समूहों का उदय हुआ। विभिन्न कबीलों अथवा आदिम समूहों से संबद्ध होने के कारण वे स्वतंत्र रूप से आगे की ओर अग्रसर हुए और विभिन्न भू क्षेत्रों में उन्होंने अपनी बस्तियां बसाकर ग्राम का विकास किया। फलस्वरूप समुदाय और समूह के रूप में जाति की अवधारणा का उत्कर्ष हुआ। इससे तत्कालीन समाज में दायित्व की भावना का भी उदय हुआ और खाद्य उत्पादन की ओर भी ध्यान दिया गया। खाद्य उत्पादन का सर्वप्रथम प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व के लगभग सिंधु नदी की घाटी में हुआ, जो धीरे धीरे सिंधु प्रदेश के पूर्व के भू क्षेत्र में फैला। अतः कृषि उत्पादन के साथ साथ समाज में श्रम का महत्व भी बढ़ा। इसे कई मानव समूह संगठित हुए, जिन्होंने जाति प्रथा के प्रारंभिक स्वरूप को बल प्रदान किया। धातु के ज्ञान के कारण आदिम समाज की कार्य पद्धति और कृषि पद्धति में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। नए प्रदेशों की जानकारी से उनके विभिन्न समूहों को आवास और कार्य में सहूलियत हुई। वे स्वच्छंद और उन्मुक्त होकर अपने समाज के विकास में लग गए तथा अपने अस्तित्व के स्थायित्व पर गंभीरता से सोचने लगे। आदिम समाज ने जनजाति और कबीले के रूप में विकसित होकर तत्कालीन जाति व्यवस्था के वर्ग संगठन को बढ़ावा दिया। इस आधार पर संगठित वर्ग सामंतीय विचारधारा से प्रभावित होकर कार्य करने लगा। उत्पादन को व्यवस्थित करने वाला एक वर्ग हुआ तथा उत्पादन में श्रम करने वाला दूसरा वर्ग। अतः आर्थिक शक्ति के साथ साथ समाज में भू क्षेत्र से संबंधित संगठित वर्ग की शक्ति का भी सूत्रपात हुआ। भूमि ऐसे ही संगठित वर्ग के अधिकार में थी, जो अपने अधिकार के आधार पर व्यवस्था करता था। धीरे धीरे ऐसे समूह के अपने आचार विचार, रीति रिवाज और नियम सिद्धांत बनने लगे थे तथा तदनुरूप वे कार्य भी करने लगे थे। उनके सामाजिक निर्देश समय के अनुसार कठोर होने लगे थे तथा समाज के निर्देश का पालन न करने वाला मनुष्य समाज से बहिष्कृत किया जाने लगा था। समूहों और वर्गों के वाद विवाद या संघर्ष पारस्परिक प्रथाओं और नियमों को ध्यान में रखकर निपटाए जाते थे तथा ग्रामों के माध्यम से उनका यथोचित मार्गदर्शन किया जाता था। ऊपर के सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि प्रागैतिहासिक सभ्यता के अवशेष भारत के विभिन्न हिस्सों में मिले हैं, किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रामाणिक अवशेष पाकिस्तान स्थित सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी रावी की उपत्यका में प्राप्त हुए हैं। इन दोनों नदियों के कांठे में ताम्रयुगीन नगर सभ्यता का हुआ था, जिसका भग्नावशेष इन दोनों स्थानों के टीलों की खुदाई में मिला है। पहला अवशेष मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है, जो सिंधु नदी के दक्षिण तट पर स्थित है, तथा दूसरा हड़प्पा, जो पश्चिम पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा के निवासी ताम्र औजारों का प्रयोग जानते थे, किंतु पश्चिमी एशिया, मिस्र, क्रेटे आदि देशों की तुलना में यहाँ से ताम्र औजारों की प्राप्ति कम हुई है। दोनों स्थान इन दिनों पाकिस्तान में हैं तथा दोनों नदियों द्वारा धाराएं बदल दिए जाने के कारण अलग हैं। इन स्थानों की खुदाई से विपुल सामग्री प्राप्त हुई है, जिसे प्रारंभिक सुनियोजित नगरीय सभ्यता पर प्रकाश पड़ता है। भवन प्रायः 200 से 400 गज के चौकोर भू क्षेत्र में निर्मित किए जाते थे। इन नगरों में पक्की ईंटों की सहायता से कई कई मंजिलों के भवनों के निर्माण हुआ करते थे, जिनमें प्रकोष्ठों के अलावा स्नान घर और नित्य क्रिया कोष्ठ भी रहते थे। घरों में प्रवेश द्वार, बड़ा कमरा, द्वारपाल प्रकोष्ठ, आंगन, नीचे और ऊपर के मंजिल में कमरे आदि सन्निविष्ट रहते थे। ढकी हुई नालियों से घरों का गंदा पानी बाहर निकाला जाता था। चौड़ी और बड़ी सड़कें थीं, जिससे अन्य सड़कें और गलियां आकर मिलती थी। सड़कों के दोनों ओर बड़ी बड़ी इमारतें और भवन थे। खुदाई में 90 फुट का एक विशाल सभा मंडप मिला है, जो चौकोर ईंटों के 20 खंभों पर टिका हुआ था। विशाल स्नान गृह के अवशेष भी मिले हैं, जो आंगन, बरामदा, स्नान कुंड आदि से युक्त था। इससे लगा हुआ हम्माम भी था। वस्तुतः इतने प्राचीन काल में इतनी सावधानी से संयोजित इतना सुंदर और उत्तम नागरिक संगठन और कहीं नहीं मिलता। अतः सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व के अन्य समकालीन सभ्यता से कहीं अधिक व्यवस्थित और सुनियोजित थी। मिस्र, सुमेर, अक्कद, बाबेरु यानी कि बेबीलोन आदि देशों की समकालीन सभ्यता भी नगरी सभ्यता थी, जो ईंटों के जोड़ से बनी थी। संभवतः हड़प्पा वासियों का संबंध दक्षिणी भारत से भी था, जो व्यापारिक मार्गों से स्थापित हुआ था। यही नहीं, इसका व्यापारिक संबंध समुद्र पार के पश्चिमी देशों से भी था। इराकी खुदाई में भारतीय मुद्राएं मिली हैं जो दोनों देशों के व्यापारिक संबंध को उद्घाटित करती हैं। मेसोपोटामिया में संभवतः भारतीय व्यापारियों की थोड़ी बस्ती रहती रही जो दोनों संस्कृतियों के बीच सेतु का काम करती थी। सिंधु घाटी की कुछ मुद्राएं इराकी प्रभाव से आवृत लगती हैं। इन दोनों देशों के बीच फारस की खाड़ी में बहरीन द्वीप स्थित था जो व्यापारिक मंडी के रूप में ख्यात था। यहां से अनेक वस्तुएं मुद्राएं और गांठदार मिट्टी के पात्र मेसोपोटामिया पहुंचते थे। उन्हें विभिन्न धातुओं का ज्ञान था। वे आभूषणों के लिए स्वर्ण का भी प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, मटर जैसे अनाज का उत्पादन भी करते थे जिससे वे अपने समाज का भरण पोषण करते थे। अगर इसकी मिस्र की सभ्यता से तुलना की जाए तो यह स्पष्ट होता है कि नील नदी की घाटी अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ थी, जहाँ की रौसली मिट्टी कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त थी। सिंचाई के लिए वहाँ नहरें भी थी, किंतु सिंधु घाटी के लोग केवल बाढ़ के पानी पर निर्भर करते थे। वे संभवतः नहर का उपयोग नहीं करते थे। इसका कारण संभवतः पंजाब में बहने वाली नदियां थीं, जिनमें से घग्गर और सरस्वती अब सूख चुकी हैं। सिंधु घाटी के लोग लिखने पढ़ने में दक्ष थे, किंतु उनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। यद्यपि उसे पढ़ने में अनेक विद्वानों ने प्रयास किया। इधर परपोल और महादेवन ने कंप्यूटर द्वारा इस लिपि को समझने की कोशिश की। उन्होंने 250 से 417 चिन्ह इस लिपि से निकाले हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि उनकी लिपि वर्णमाला पर आधारित नहीं थी बल्कि चित्रीय थी। इसके लेख मुहरों, बर्तन के ठीकरों, तांबे के लघु टुकड़ों आदि पर अंकित हैं। यहाँ से विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो चाक से बनाए गए हैं। इन पर अनेक रेखाएं भी चित्रित की गई हैं। मिट्टी के अनेक खिलौने भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें झुनझुने पुरुष, स्त्री, चिड़ियां, बच्चों आदि के खिलौने प्रमुख हैं, किंतु इन मूर्तियों में कलात्मकता और सजीवता नहीं है। पत्थर की मूर्तियां बहुत कम मिली हैं। हड़प्पा से एक मूर्ति लाल पत्थर की मिली है और दूसरी मूर्ति गहरी सिलेटी पत्थर की। यही नहीं, यहाँ के लोग विभिन्न धातुओं से परिचित थे। वे धातु के विभिन्न औजार बनाते थे जो सुमेरी लोगों से अधिक प्राचीन हैं। इन औजारों में ताम्र की आरी, कटारी, छुरी, नुकीली बर्छी आदि प्रमुख हैं। ये लोग सुमेर सभ्यता के लोगों की तरह रांगा चढ़े हुए कांसे का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता से स्त्रियों की अनेक मूर्तियां मिली हैं। ऐसी मूर्तियां बलूचिस्तान, पश्चिमी एशिया, भूमध्य सागरीय एजियन तट, एलम, मेसोपोटामिया, कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग, एशिया माइनर, सीरिया, यूनान, मिस्र आदि देशों में भी पाई जाती है। ये मूर्तियां प्रकृति देवी महामृतका की मानी गई हैं, जो आद्याशक्ति के रूप में पूजित हुई। शिव की त्रिमूर्ति की आकृति भी मिली है जो योगासन पर बैठी हुई है और उसके दोनों ओर विभिन्न पशु अंकित हैं। इन पशुओं में गेंडा, शेर, हाथी, भैंसा आदि हैं। वैसे सुअर, मेढ़ा, कुत्ता, बंदर, रीछ, गिलहरी, तोता आदि की भी मूर्तियां और चित्र मिले हैं। लिंग के आधार की भी मूर्ति मिली है जो लिंग पूजन को व्यक्त करती हैं। कुछ मुहरों पर वृक्ष पूजन का आभास मिलता है। वस्तुतः सिंध सभ्यता का सामाजिक जीवन धनी व्यापारी वर्ग, पौरोहित्य धार्मिक वर्ग, प्रशासनिक राजकीय वर्ग तथा श्रमिक और कृषक वर्ग से मिलकर संगठित हुआ था, जो तत्कालीन अवशेषों के अध्ययन से स्पष्ट होता है। उस युग के लोग सभ्य और सांस्कृतिक थे। उनके रहन सहन का ढंग भव्य और उत्तम था। अद्यतन खुदाइयों से यह सिद्ध हो चुका है कि यह सभ्यता पश्चिमी भारत, राजस्थान, गुजरात, मालवा, गंगा की तलहटी, ऊपरी दोआब आदि क्षेत्रों में प्रसारित थी। सिंधु जैसी समृद्ध और उत्कर्षित संस्कृति प्रारंभ काल लगभग 2450 ईसा पूर्व के लिए, यह कहा गया कि इसका विनाश लगभग 1500 ईसा पूर्व संभवतः आर्यों के तूफानी आक्रमण से हुआ। इस संबंध में मोहनजोदड़ो में हिंसा के कुछ प्रमाण मिले हैं। वहां से प्राप्त नर कंकाल के अवशेष आक्रमण, संघर्ष और प्रतिरोध की सूचना देते हैं। फलतः बर्बर और विध्वंसक आक्रमण से यह सभ्यता नष्ट हो गई। अंतिम आक्रमण में मारे गए लोगों के शव उसी स्थान पर हैं जहां वे लड़े थे। लगता है आक्रामक आगे बढ़ते गए और प्रतिरोधी मारे गए या बंदी बनाए गए। यह सभ्यता 1800 ईसा पूर्व से 1500 के बीच पूर्णतः विनष्ट हो गई। सिंधु सभ्यता के पतन के लिए भूगर्भीय परिवर्तन भी एक प्रमुख कारण माना गया है, जिसके फलस्वरूप सिंधु, राजस्थान और गंगा की उपत्यका की नदी व्यवस्था में भीषण बाधा उपस्थित हुई। विध्वंसकारी बाढ़ के अनेक प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत हड़प्पा में निरंतर सूखा पड़ने से वहां के निवासी पूरब की ओर बढ़े और पंजाब के दूसरे स्थानों में जा बसे। कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक परिवर्तन भी हुए जिससे नगरीकरण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई तथा इन क्षेत्रों का नए भौगोलिक परिवेश में उदय हुआ। साथ ही निरक्षर विदेशियों का इन नगरों पर आधिपत्य हुआ। इन विदेशियों का आगमन पश्चिमोत्तर ईरान से हुआ जो आक्रामक के रूप में प्रविष्ट हुए। व्हीलर का विचार है कि सिंधु हड़प्पा की सभ्यता का विनाश करने वाले आर्य ही थे तथा वैदिक सूक्तों की रचना प्रागैतिहासिक युग में किसी समय हुई थी। बर्बर और विनाशकारी आक्रमण से यहाँ की सुसभ्य विद्वत और साहित्यिक परंपरा विघटित हो गई जिसके परिणाम स्वरूप इतिहास की क्रमबद्धता भी विच्छिन्न हुई। निश्चय ही 1500 ईसा पूर्व तक पश्चिमोत्तर भारत पर अनेक जातियों के आक्रमण हुए जो बलूचिस्तान की ओर से पूरब की ओर बढ़ रही थी। इन आक्रामक जातियों ने हड़प्पा संस्कृति पर बार बार चोटें की। 2400 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच का काल संपूर्ण पश्चिमी एशिया और निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए अशांति और अव्यवस्था का काल था। उस युग में गुटी नामक खानाबदोश जाति ने सुमेर और अक्काद में शासन किया था। प्रायः 22वीं सदी ईसा पूर्व में ऐसी लड़ाकू जाति का फैलाव हुआ जो मरे हुए लोगों को प्रस्तर संदूक में दफनाया करती थी। लगभग इसी समय अलाकाहुयुक में राज परिवार की कब्र बनी थी जहां से 3 लंबी तलवारें मिली हैं जो प्रायः 2000 ईसा पूर्व की हैं। इस सभ्यता के लोग ईरान के ऊंचे पठार पर निवास किया करते थे। तदंतर टेपे ज्ञान की संस्कृति का प्रसार हुआ और ज्ञान का तीसरा चरण चौथे की तुलना में भिन्न संस्कृति का भान कराता है। ऐसी संस्कृति से संबंधित लोग योद्धा थे जो पूर्वी अनातोलिया, काकेसस, जगरोस, अलबुर्ज आदि क्षेत्रों में फैले। पहले से रहने वाले लोगों को नई बढ़ती हुई आक्रामक जाति से लड़ना पड़ा तथा इस बढ़ाव में पूर्ववर्ती संस्कृति को आघात लगा। इससे वहां का समस्त भू क्षेत्र आक्रांत हो गया था। ये आक्रामक यायावरी जीवन व्यतीत करते चलते थे। ऐसे ही समय उत्तरी मध्य बलूचिस्तान में पेरियानो तृतीय के लोग अपना अधिकार जमा चुके थे तथा सिंधु सभ्यता अंतिम सांसें ले रही थी। सिंधु में गेज घाटी के नीचे और लासवेला में कुल्ली और मेहो में कुल्ली सभ्यता का अस्तित्व था। इसके अस्तित्व का पता उन कुल्हाड़ियों से लगता है जो ईरान मकरान में खुरब की समाधि से प्राप्त हुई है। ये कुल्हाड़ियाँ टिल, बारसीव, वान और लुरिस्तान में पाई गई पतली धार वाली कुल्हाड़ियों से साम्य रखती हैं। ये कांसे की हैं और इन पर एक ऊंट बैठा हुआ है। वस्तुतः ये सभी कुल्हाड़ियाँ किनारे से समान हैं और छिद्र के कुंदे पर एक जानवर बना है। इन कुल्हाड़ियों का काल 1850 ईसा पूर्व के लगभग है। बलूच मकरान के केज घाटी स्थित शाही टीले की खुदाई में अनेक कब्रें मिली हैं जो इस सभ्यता पर प्रकाश डालती हैं। ऐसी कुल्हाड़ियाँ बलूचिस्तान और सिंध में पहले कभी नहीं मिली थी। ईरानी पठार के इन्हीं आक्रामकों ने कांसे की ऐसी ही कुल्हाड़ियाँ प्रचलित की थी। यद्यपि इनके निवास स्थान के विषय में निश्चित रूप से पता नहीं चलता, तथापि इनका भीषण आक्रमण हुआ जिसमें आक्रांता को भारी नुकसान उठाना पड़ा। समृद्ध और उपजाऊ भूमि की खोज में इस लड़ाकू और बर्बर जाति ने लंबी लंबी यात्राएं की थी तथा अपने बसने की स्थायी व्यवस्था के लिए जाति बहुत चिंतित थी। अब यह हिंदू कुश के पूरब की ओर नए प्रदेश की खोज में चल पड़ी थी। इस जाति को पंजाब और सिंध जैसे उपजाऊ भू क्षेत्र की चाह थी। इसे बलूच की पतली पहाड़ी अनुपजाऊ घाटियों से कोई सरोकार नहीं था। हड़प्पा और सिंध में झकर लोगों के साथ ही इन आक्रामकों के प्रमाण मिलते हैं। चन्हुदड़ों से कुल्हाड़ी के डंडे का छिद्र और विभाजित मुहरें प्राप्त हुई हैं जो झकर काल की हैं तथा शाही टंप में पाई गई वस्तुओं के सदृश हैं। यहाँ से झकर मुहर भी मिली है जो बिना अभिलेख की है। लगता है वे अनपढ़ थे। झकर के मिट्टी की बर्तनों पर पीली, सफ़ेद और लाल चित्रकारी है जिस पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव है। इन झकर लोगों ने पश्चिमी पंजाब के छोटे छोटे नगरों को हस्तगत कर लिया था। केवल मोहनजोदड़ो नगर ही थोड़ा बहुत बचा रह गया था जिसे आर्यों के आक्रमण की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। ऋग्वेद से विदित होता है कि आर्यों का असुरों से संबंध था जो जादूगर थे और उन्हें व्यवसायी पनीज समझा जाता था। वे लोग किलेबंद नगर में निवास करते थे। यह सत्य है कि आर्यों और यहाँ के निवासियों के बीच अनेक संघर्ष हुए जिसमें संभवतः झकर लोग सिंधुवासियों के साथ हो गए, किंतु इस क्षेत्र में आक्रमण और संघर्ष बराबर चलता रहा। भारत में आर्य ईरान से होकर आए। उनका मार्ग प्रायः उत्तरी हैरात, किरमान, किला एविस्त और कंधार था। परसिया और बलूच मकरान के प्रदेशों से वे गुजरे थे। तोची, गोमल और कुर्रम घाटी को उन्होंने अपने लंबे लंबे काफिले के साथ लांघा था। ऋग्वेद से पता चलता है कि आर्यों का अनार्यों से अनेक बार संघर्ष हुआ था। वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे कुल पुरोहितों की प्रतिद्वंदिता बराबर चलती रहती थी। लगता है यह प्रतिद्वंदिता और प्रतिरोध जनजातियों और कबीलों की थी जो एक दूसरे पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। आर्यों द्वारा असुरों की अलग श्रेणी बना दी गई थी। उत्तरी सिंध और पंजाब के दक्षिण पश्चिम तुरुवासा, यदु और ब्रिजवंत ऐसे ही असुर कबीले थे जो संभवतः झकर रक्त के थे। सिंधु प्रदेश में रहने वाले असुरों ने आर्यों के प्रभाव और प्रसार को अवरुद्ध कर दिया था तथा प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें चुनौती दी थी। मध्य प्रदेश की जनजातियां संभवतः इन्हीं असुरों से संबंध है। ऋग्वेद के आर्यों के पहले दर्शन और ज्ञान के मर्मज्ञ ब्राह्मण लोग रहते थे। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि यदु और तुरुवासा इंद्र के शत्रु थे जो ययाति और देवयानी के पुत्र थे। देवयानी ब्राह्मण शुक्र की पुत्री थी और शुक्र असुरों के गुरु थे। अतः असुर मानव ही थे जिन्हें आर्यों ने अपने से भिन्न मानकर असुर नाम से संबोधित किया था। लेकिन प्रारंभ से ही सभी आर्य ब्राह्मण पुरोहित थे, यह युक्ति युक्त नहीं। वैसे आर्य शब्द का अर्थ कुलीन और सच्चरित्र होता है तथा उन्हें भारतीय समाज के उच्च तीनों वर्गों का सदस्य माना जाता है। वस्तुतः आर्यों का एक विशेष परिवार है जो यूरोप और एशिया से में विद्यमान है। संस्कृत, लातिनी और यूनानी भाषाएं प्राचीन आर्य भाषाओं की प्रमुख समूह थी। लातिनी समूह के अंतर्गत इताली, स्पानी, फ्रांसीसी, रोमानियन आदि रोमेंस भाषा समूह थे। साथ ही जर्मन, अंग्रेजी, स्वीडी आदि भाषाएं ट्यूटोनी परिवार के अंतर्गत हैं और रूसी, पोलिश आदि स्लाव परिवार के अंतर्गत। ये सभी भाषाएं आर्य भाषा की उपसमूह के रूप में मानी जाती हैं। फिनिश, हंगेरियन आदि भाषाएं आर्य भाषा समूह से सर्वथा अलग हैं। संस्कृत से इंडो आर्यन भाषाएं भी निकली हैं। संस्कृत से पाली निकली जो मगध में बोली जाने के फलस्वरूप मगधी कहलाई। प्राकृत भाषा भी विकसित हुई। हिंदी, बांग्ला, मराठी, पंजाबी आदि कई भाषाएं इसी से निकली हैं। अनार्य भाषाओं में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तुलु भाषाएं द्रविड़ भाषाओं के रूप में निश्रित हुई। ऐसी स्थिति में दो समानांतर जाति समूहों की संस्कृतियां भारत में विकसित हुई जिनका विकास आर्य और अनार्य के रूप में हुआ। अब हम बात करेंगे आर्य जनजाति और उसका भारत में प्रवेश। दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के लगभग आर्यों के ताम्र और लौह धातुओं के औजारों के अतिरिक्त अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी मिलने लग जाते हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि उसके पहले से भारत के पश्चिमी हिस्से में इनका फैलाव हो चुका था। ये घुमंतु और युद्धप्रिय जनजाति के थे तथा अपने मवेशियों को विस्तृत भूक्षेत्र में चराते थे। अपने साथ सामान लादने के लिए घोड़े, जूते, रथ या बैल जुती गाड़ियों का उपयोग करते थे। इनके समाज में पिता की महत्वपूर्ण भूमिका थी तथा धन का स्वामी पुरुष ही होता था। भारत में स्थिर होने के पूर्व इनका जीवन अत्यंत गतिशील और यायावर का था। आहार की खोज में ये लोग अपने पशुओं के साथ लंबे लंबे विशाल भूभागों और पर्वतों को पार करते थे तथा मार्ग में पड़ने वाली जनजातियों को विनष्ट करते थे। अपने इस रोमांचक जीवन में उन्हें जो उपयोगी सुझा उसे उन्होंने ग्रहण कर लिया तथा कुछ ठहराव के बाद आगे की यात्रा पुनः प्रारंभ कर दी। वस्तुतः मध्य एशिया से आने वाले आर्य जाति समूह का आक्रमण बलख की ओर से भारत में हुआ था और यहाँ के उपजाऊ भूभाग तथा उपयुक्त जलवायु देखकर आकृष्ट हुआ था। विभिन्न प्रमाणों से स्पष्ट है कि प्रारंभिक भारतीय आर्यों का संपर्क ईरानी आर्य समूह से था जो उर्मियेह झील के निकट निवास करता था। ईरान के ये आर्य लोग भी ऋग्वेद में वर्णित इंद्र, वरुण, मित्र आदि देवताओं का पूजन करते थे। ऋग्वेद में वर्णित इंद्र देवताओं का नेता था जिसने असुरों अथवा राक्षसों का विनाश किया था। ब्यास नदी के तट पर असुर उसस को इंद्र ने उसकी बैलगाड़ी का विनष्ट करके पराजित किया था। तदंतर इंद्र ने तीन सिर वाले त्वाप्त असुर का भी वध कर डाला था। ईरानी मिथकों में भी ऐसे ही तीन सिर वाले दानव का उल्लेख है। अवेस्ता से ऐसे अनेक साक्ष्य मिलते हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय आर्य और ईरान के लोग एक दूसरे से संबंधित थे। ऋग्वेदकालीन आर्य संस्कृति का काल 1400 ईसा पूर्व से बहुत पहले का था जब आर्य पश्चिमी पंजाब, आधुनिक पाकिस्तान में निवास कर रहे थे। वस्तुतः ऋग्वैदिक समाज नगरीकरण के पूर्व का समाज था, जो पूर्णतः ग्राम्य सभ्यता से परिपूर्ण था। उस युग में ताम्र और लौह तकनीक को अपनाया जाने लगा था। इसी समय दास राज्य युद्ध भी हुआ, जो दो जनजाति समूहों के संघर्ष, प्रतिरोध और चुनौती को स्पष्ट करता है। उत्तर पश्चिमी पंजाब में बसे हुए लोगों और आर्यों के बीच प्रभुता स्थापना के लिए यह मुठभेड़ हुई थी। इस युग के सभी जाति समूहों ने, जो उक्त भूक्षेत्र में निवास कर रहे थे, संघर्ष में भाग लिया था। यह संघर्ष राजनीतिक प्रभुता स्थापना के अतिरिक्त जाति समूहों की विशिष्टता स्थापना के लिए भी था। आर्यों के पूर्ववर्ती निवासियों ने आक्रामक आर्य जाति को चुनौती दी थी तथा प्रतिरोध के लिए अपना स्वर गुंजरित किया था। सिंधु क्षेत्र के पश्चिम में स्थित ऐसे पांच अनार्य जन समूह थे जो आर्यों के आगमन के बहुत पहले से रह रहे थे। अनिल, आधुनिक काफिरिस्तान में। पख्त, आधुनिक पख्तून। भलान, बोलन दर्रे के निवासी। शिव, सिंधु के निकट रहने वाले लोग तथा विसानिन। इसके अतिरिक्त सिंध के इस पार के पांच और जन समूह थे, अनु, दुरिहा, तुर्वस, यदु और पुरु। यमुना तटवर्ती अज, सिब्रु और यक्षु थे, जो अनार्य थे और जिनके नेता का नाम भेद था। कवस, शंबर और दो वैकरण आर्य नरेश थे, जिनके साथ उनके अनुवर्ती 21 जन थे। इस युद्ध का संचालन राजाओं के पुरोहितों ने किया था। दास राज्य संगठन का नेतृत्व विश्वामित्र ने किया था तथा उनके विरुद्ध युद्ध का संचालन वशिष्ठ ने किया था, जो सुदास नरेश के पुरोहित थे। भृगु अनेक लोगों के नेता थे। इस भीषण युद्ध में राजा दिवोदास के पुत्र सुदामा की विजय हुई थी, जिससे वह अपनी जनजाति में शक्तिशाली शासक के रूप में उभर कर आया। साथ ही तत्त समाज में वशिष्ठ के ब्राह्मणत्व और पौरोहित्य की भी धाक जमी। दस राजाओं का युद्ध इसलिए हुआ था कि इन दसों ने परुष्णी नदी को मोड़ने का यत्न किया था, जिससे उनके भूक्षेत्र की सिंचाई सरलतापूर्वक होती और उत्पादन में वृद्धि होती। किंतु उनके इस प्रयास का प्रबल प्रतिरोध दिवोदास ने किया था तथा उनका यह कार्य सफल नहीं होने दिया था। यह नदी आधुनिक रावी का भाग है। इससे कृषि और सिंचाई व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश पड़ता है। आर्य और अनार्य प्रतिरोध और संघर्ष सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए भी था, किंतु यह स्पष्ट है कि आर्य लोग अपने पूर्ववर्ती सिंधु के नागर निवासियों की तुलना में बर्बर और असभ्य थे। उनकी संस्कृति अविकसित और निम्न स्तर की थी। वे ईंट के अस्थायी भवन निर्माण तकनीक से अनभिज्ञ थे तथा पठन पाठन कला और स्थापत्य से भी अनभिज्ञ थे। पौरोहित्य के निमित्त वे केवल श्लोकबद्ध सस्वर पाठ करते थे, कर पाते थे, लिखना नहीं जानते थे। वे रथ, गाड़ी, शस्त्र, औजार आदि निर्मित कर पाते थे। इसके आगे के विकास की जानकारी उन्हें नहीं थी। उनमें किसी प्रकार के जाति भेद अथवा वर्ग भेद की भावना नहीं थी। यद्यपि इस काल में ऐसे ब्राह्मण पुरोहितों का वर्ग उदित हुआ, जो समय और आवश्यकता के अनुरूप एक से अधिक यजमानों की सेवा करता था और उन्हें आशीर्वाद देकर विपुल संपत्ति प्राप्त करता था। ऐसे ब्राह्मण पुरोहित बिना भेद के आर्य अथवा अनार्य किसी की भी सेवा में रत रहते थे। ऋषि वश असभ्य ने दास कबीले के स्वामी बलबुत और तरुक्ष को आशीर्वाद देकर दक्षिणा में 100 ऊंट प्राप्त किया था। वैसे उस युग में पशु संपत्ति के रूप में स्वीकार किया गया था तथा दान और दक्षिणा में पशु प्रदान किए जाते थे। राजन्य वर्ग का विकास भी कबीले के रूप में हुआ था तथा शूद्र भी ऐसा ही समूह था। इस प्रकार विभिन्न जनजातियां विकसित हुई। वस्तुतः कबीले के सभी सदस्य होते थे, चाहे वह कारीगर रहे हों अथवा श्रमिक। परवर्ती ऋग्वेदकालीन सैन्य व्यवस्था के संचालक और सैनिक संभवतः ऐतिहासिक रहे हैं, क्योंकि उनके व्यवस्थाकर्ता शासक थे, इंद्र नहीं थे। सुदास आदि विभिन्न राजाओं के नाम मिलते हैं जो तत्कालीन युद्ध में सम्मिलित हुए थे और जिन्होंने अनार्यों को पराजित किया था। विजेता आर्यों ने पराजित अनार्यों को असुर या दास कहना प्रारंभ किया था तथा उन्हें अपनी रक्त पंक्ति से सर्वथा अलग माना था। आर्य अब पंचनद के पूर्व की हिमालय की तराई से होकर दक्षिणी नेपाल तक और वहां से बिहार की ओर प्रसरित होने लगे थे तथा वहां के जंगलों को काटकर और दुर्गम मार्गों को साफ कर अपने रहने की व्यवस्था में लगे थे। उनके कबीले में एक निम्न समूह विकसित हो गया था जो शूद्र कहा गया था। इस प्रकार आर्यों के समाज में शूद्र निम्न दास वर्ग के रूप में पनपा था तथा यूनान और रोम के दासों की तुलना में वह मानवीय आधार पर व्यवहारित किया गया था। शूद्र दास के रूप में आर्य कबीले के उच्च वर्ग के पशु की तरह उनकी संपत्ति थे। आर्य कबीले में तीन वर्ण समूह बन गए थे, राजन्य या राज परिवार अथवा योद्धा शासक क्षत्रिय वर्ग, ब्राह्मण धार्मिक क्रिया कराने वाला पुरोहित वर्ग, और वैश्य कृषि और पशुपालन करने वाले तथा आहार उत्पन्न करने वाले। और आर्य कबीले में विकसित ये समूह वर्ग व्यवस्था को व्यक्त करते हैं तथा संपत्ति रखने की व्याख्या करते हैं। यह सही है कि इस काल तक वस्तु और अन्य उत्पादन तथा व्यक्तिगत संपत्ति रखने का दर्शन समुचित रूप में विकसित नहीं हो सका था, तथापि पशुओं पर सामूहिक स्वामित्व का संदर्भ प्राप्त होता है तथा जीवन में अर्थ के महत्व को अभिव्यक्ति मिलती है। आर्यों के समाज में जाति प्रथा का भी विकास होने लगा तथा अपने विशेष कार्य के प्रति विशेष समूह जागरूक रहा। ब्राह्मण लोग छोटे छोटे समूहों में बंटकर फैलने लगे तथा उनके कर्म कांड और यज्ञ का समाज में महत्व बढ़ गया। इसी प्रकार जो वर्ग शस्त्रों से व्यापारियों की आदिवासियों निषादों से रक्षा करता था वह वर्ग क्षत्रिय वर्ग हुआ। राजन्य वर्ग अपने विभिन्न कार्यों के संपादन में ब्राह्मणों की सहायता के बिना नहीं बढ़ पाता था। इसी प्रकार कबीलों और वर्णों की रक्षा क्षत्रिय जैसे बलशाली वर्ग के लोगों से ही हो सकती थी जो शत्रुओं से ब्राह्मणों और कृषि तथा वस्तु उत्पादकों की रक्षा करता था। अतः आर्यों का समाज इसी आधार पर संगठित होने लगा तथा उसके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चार वर्ण हो गए। उपजाऊ भूमि पा जाने के कारण वे अब यायावरी और घुमंतू जीवन त्याग कर एक स्थान पर उत्पादन और कृषि करने लगे। अपनी ग्राम्य सभ्यता के सुधार के विषय में भी सोचने के लिए बाध्य हुए। फलस्वरूप वे कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सिंचाई का उपयोग करने लगे। कुएं पोखर से पानी निकालकर नालियों द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता था। खेत जोतने में 8 या 12 बैल जोड़े जाते थे। परवर्ती ऋग्वेदकालीन आर्य अपने समाज का विकास चाहते थे तथा उसके निमित्त वे तकनीकी विकास कर रहे थे। इस काल तक वे अनेक धातुओं का प्रयोग जान गए थे तथा विभिन्न धातुओं के विभिन्न उपकरण वे बनाने लगे थे। धातु का कार्य करने वाली करमार नामक नई जाति बन गई जो धातु को आग में गलाती थी। पशु और बसुले वासी लोहे के बनते थे जिन पर नक्काशी की जाती थी। लोहे को पीट कर तथा धातु को गलाकर अनेक उपयोगी बर्तन बनाए जाते थे। सुनार यानी हिरण्यकार सोने के आभूषण बनाते थे। कर्ण शोभन निष्क मणिग्रीव आदि आभूषण अधिकतर स्वर्ण के बनते थे। धातु के तकनीकी ज्ञान के अतिरिक्त वे कपड़ा बुनना जानते थे और करघे से बुनाई करते थे। चाबुक गोफना प्रत्यंचा बद्धियां मशक आदि चमड़े से बनाए जाते थे जिसे चर्मकार बनाता था। रथ गाड़ी छकड़ा आदि का निर्माण बढ़ई करता था जिसे तक्षा कहा जाता था। स्पष्ट है कि आर्यों के सिंध प्रदेश में आने के बाद तथा पूर्ववर्ती निवासियों के संपर्क में आने के पश्चात उनके यानी कि आर्यों के तकनीकी ज्ञान का विकास हुआ। विविध सामग्रियों का निर्माण तथा उनके लिए यथोचित केंद्र स्थल का विकास उनके तकनीकी ज्ञान का प्रतीक है। आर्यों के समाज में कृषि तकनीक और औद्योगिक तकनीक का साथ साथ उत्कर्ष हुआ। दोनों के विकास से उनकी जनसंख्या में विक्रमशः वृद्धि होने लगी। वस्तुतः कृषि तकनीक और औद्योगिक तकनीक में सुधार होने से समाज में अनेक परिवर्तन हुए। आर्यों का परती और खाली भूमि की ओर विस्तार हुआ। जंगलों आदि को जलाकर और काटकर कृषि योग्य भूमि बनाई गई और अपने समाज का संगठन किया गया। ऊपर उल्लिखित किया जा चुका है कि आर्य घुमंतू और यायावरी का जीवन व्यतीत करते थे तथा मध्य एशिया से भारत में उनका प्रवेश उनके यायावर जीवन अंग था। वस्तुतः उनका जीवन गतिशील और प्रगतिशील था। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में उनका आगमन और उसके बाद उनका धीरे धीरे पश्चिम से पूरब की ओर गतिमान होना उनके साहसी गतिशील यायावर और चुनौती भरे जीवन का परिचायक है। ऋग्वैदिक युग के पश्चात आर्यों का बौद्धिक और शैक्षणिक विकास त्वरित गति से हुआ। तीनों वेदों के अतिरिक्त अनेक उत्कृष्ट रचनाएं की गई तथा ज्ञान और दर्शन के अनेक केंद्र स्थापित हुए। उत्तर ऋग्वैदिक काल तक आर्यों का प्रसार भारत में पूर्वी क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी हो गया। साथ ही अनेक राज्यों की भी स्थापना हुई। कुरु पंचाल कौशल काशी विदेह मगध और अंग जैसे कबीले राज्य विकसित हुए। निरंतर युद्ध और संघर्ष के कारण कबीले के शासक का अधिकार बढ़ता गया था तथा कुलों अथवा वंशों के शक्ति संपन्न मुखिया अपने प्रतिद्वंदियों को निष्कासित करते रहे थे। इस युग में जाति भेद की भावना भी बढ़ी। आदिवासियों से संपर्क न करने तथा अपने रक्त को शुद्ध बनाए रखने के लिए आर्यों ने वर्ण भेद के साथ कठोर नियम बनाए। विवाह पर नियंत्रण लगाए गए तथा अनेक जटिल नियमों से इसे आबद्ध कर दिया गया। बाद में चलकर स्वर्ण और सजातीय विवाह विहित किए गए तथा सगोत्र और सपिंड जैसा विवाह वर्जित किए गए। अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध लगाए गए। विवाह की 8 प्रकार की श्रेणियां कर दी गई जिनमें देव ब्रह्म प्रजापत्य और आर्य श्रेष्ठ आर्ष श्रेष्ठ विवाह प्रकार माने गए तथा गंधर्व आसुर, पैशाच और राक्षस विवाह प्रकार निम्न जो समाज के लिए वर्जित कहे गए। लगता है समाज में ऐसे लोग भी थे जो सामाजिक नियमों का उल्लंघन करके मनमाना कार्य करते थे। ऊंची जाति के लोग निम्न जाति की कन्या से विवाह कर सकते थे, किंतु निम्न जाति के पुरुष के लिए ऊंची जाति की कन्या से विवाह करने पर प्रतिबंध था। स्पष्ट है समाज में धीरे धीरे जाति की भावना घर करती गई। लोग अपने वर्ण अथवा जाति समुदाय के अंतर्गत रहकर कार्य में संलग्न थे। ऋग वेदोत्तर कालीन समाज में लोगों ने कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की थी। तकनीकी विकास के कारण उत्पादन में भी वृद्धि हुई थी तथा विभिन्न प्रकार के आहार और उपकरण का भी निवेशन किया गया था। वे लोग कृषि में गोबर की खाद जैसे उर्वरक का प्रयोग करने लगे थे, जिससे भूमि की उपज बढ़ने लगी थी। ब्रीही यानी कि चावल, यव यानी कि जौ, गोधूम यानी कि गेहूँ, मूंग, उड़द, तिल, मसूर आदि अनाजों का उत्पादन किया जाता था। इस काल में अनेक उद्योग धंधे भी विकसित हुए। विभिन्न प्रकार की धातु निर्मित वस्तुएं बनने लगी थी। हिरण्य यानी कि सोना, अयस यानी कि कांसा, श्याम अयस यानी कि लोहा या लौह, लोहित अयस यानी कि तांबा या ताम्र, चांदी आदि धातुएं उल्लेखनीय हैं जिनकी विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती थी। कबीलों का जीवन इस युग में भी प्रसरित था। यद्यपि ब्राह्मण पुरोहित का प्रभाव और उसके कर्मकांड का असर तत्कालीन समाज पर था, तथापि इसका प्रभाव संपूर्ण समाज पर नहीं था। शतपथ ब्राह्मण इस संदर्भ में कुछ सूचनाएं देता है। अर्जुर्वेद के परमेध्य की सूची तथा ब्राह्मण की पशु यज्ञ की सूची तत्कालीन समाज की हिंसात्मक अभिव्यक्तियाँ हैं। यज्ञों में प्रदत्त पशु बलि और उसे प्राप्त मांस भक्षण की भी सूचनाएँ मिलती हैं, जिन्हें ब्राह्मण पुरोहित ग्रहण किया करते थे और प्रसाद के रूप में यजमानों को भी दिया करते थे। वेदोत्तरकालीन समाज अधिक व्यवस्थित हो गया था। ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद ग्रंथों से आर्य जनजाति के विकासकालीन और सुव्यवस्थित समाज का चित्र दर्शित होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों के कर्मों का निर्देश दिया किया जाने लगा था। मनुष्य के विकास के लिए उसके जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक चार आश्रमों में विभक्त कर दिया गया था। उपनिषदों के समय आर्यों के समाज में बौद्धिक क्रांति हुई और उनकी कार्य पद्धति में नए परिवर्तन आए। राजन्य अथवा क्षत्रिय वर्ग के लोगों ने, जिनका मूल कर्म शासन और प्रजा की रक्षा करना था, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतदर्शी भूमिका निभाई और ब्राह्मण आचार्यों को चुनौती दी कि ज्ञान और शिक्षा प्रदान करना उनका ही एकाधिकार नहीं बल्कि उसे कोई भी अपना सकता है। पांचाल, नरेश, प्रवाहन, जैबली, केकई शासक अश्वपति, विदेह नृप जनक, काशी नरेश, अजात शत्रु जैसे क्षत्रिय शासकों ने अनेक विद्वान ब्राह्मणों को भी ज्ञान की शिक्षा दी थी। इनके अतिरिक्त प्रतरदन, चित्र, गांगायन, जनुश्रुति, पात्रायन, बृहद्रथ आदि अनेक क्षत्रिय शासक थे जो दर्शन और मीमांसा में प्रवीण थे तथा उनके यहाँ ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेक ब्राह्मण दूरस्थ प्रदेशों से आते थे। सामाजिक व्यवस्था के शैक्षिक परिवेश में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इससे ब्राह्मण आचार्यों की स्थिति दयनीय हुई, क्योंकि इस काल तक जाति व्यवस्था का स्वरूप जन्म से परिबद्ध हो गया था। इसलिए कर्म के परिवर्तन से जाति का परिवर्तन नहीं हुआ। आर्यों के प्रसार से स्थानीय परिवेश भी परिवर्तित हुए तथा भाषा और लिपि भी कुछ सीमा तक निर्मित हुई, किंतु अभी तक यह निश्चित नहीं हो पाया है कि आर्यों की कौन सी वर्णमाला थी। प्रारंभिक आर्य कबीले पश्चिमी पंजाब में अशिक्षित रूप में ही थे, इसके बाद ही वे भाषा और लिपि से परिचित हुए। संभवतः परवर्ती ब्राह्मी लिपि अपनी प्रारंभिक स्थिति में नए नगरों में व्यवहृत हो गई थी। सातवीं सदी ईसा पूर्व के लगभग केवल दो एक नगर ही विकसित हो सके थे, अन्यथा कस्बे ही थे। हड़प्पा और सिंधु नगर के अंतिम विध्वंस के पश्चात आर्यों के आगमन पर उन्हीं स्थानों का विकास पहले की तरह नहीं हुआ था। इसका प्रधान कारण यह था कि आर्य ग्राम्य सभ्यता के अनुगामी थे तथा बीहड़ जंगलों और अव्यवस्थित भूक्षेत्रों में अधिकांश समय बिताने के कारण वे नगरीकरण की योजना से मूलतः अपरिचित थे। फिर भी व्यापार तथा आवागमन की सुगमता के कारण नगरों का स्वाभाविक विकास नदियों के सानिध्य से प्रारंभ हो गया था। यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली, हस्तिनापुर, कौशाम्बी तथा गंगा के किनारे वाराणसी जैसे नगर जीवंत हुए। इन नगरों का तारतम्य इतिहास ही नहीं मिलता बल्कि इनके संबंध में अनेक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। महाकाव्य काल में आकर आर्य संस्कृति और अधिक विस्तृत एवं परिनिष्ठित हुई तथा उसका दूरवर्ती प्रदेशों तक फैलाव हुआ। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य सुव्यवस्थित संगठित समाज का चित्र प्रस्तुत करते हैं। इसमें रामायण का काल और समाज महाभारत से अधिक प्राचीन है। रामायण महाकाव्य में मानव और दानव अथवा आर्य अनार्य संघर्ष का चित्रण है तथा अनार्य संस्कृति पर आर्य संस्कृति की विजय का आख्यान है। इस युद्ध का कारण नारी थी। दानव नरेश रावण द्वारा सीता को उठा लिए जाने पर राम ने उसके साथ उसके राज्य लंका पर चढ़ाई कर दी तथा रावण को पराजित कर अपनी पत्नी को प्राप्त किया। राम आर्य संस्कृति के प्रतिनिधि और रावण अनार्य संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। आर्य संस्कृति का प्रबल प्रभाव अनार्यों पर पड़ता रहा है और यही कारण है कि इस युद्ध में अनार्य वानर राजाओं का सहयोग भी राम को मिला। आर्य संस्कृति का प्रसार सुदूर लंका तक हुआ। महाभारत का विषय भी युद्ध से संबंधित है, किंतु यह युद्ध आर्यों के बीच हुआ था। इस युद्ध का कारण भी नारी थी, पांडवों की पत्नी द्रौपदी। महाभारत के कुरुक्षेत्र में भारत के सभी आर्य राजे सम्मिलित हुए थे, चाहे वे पांडवों की ओर से लड़े हों चाहे कौरवों की ओर से। यह युद्ध संभवतः 850 ईसा पूर्व के आसपास ही हुआ होगा। उस समय इसका महत्व कम रहा होगा, किंतु परवर्ती काल में इसका महत्व बढ़ता गया। इसमें वर्णित नाग वंशावली संभवतः आदिवासी जाति से संबंधित है। उस समय ये लोग जंगलों में रहते थे और स्वतंत्र रूप से आहार संग्रह करते थे। मवेशियों को लेकर विभिन्न स्थानों को भ्रमण करते हुए ये अपना जीवन यापन करते थे। 6वीं सदी ईसा पूर्व में भारतीय समाज को नए प्रतिरोधों, चुनौतियों और परिवर्तनों का सामना करना पड़ा था। पारस्परिक भारतीय समाज जो हिंदू धर्म और उसके गूढ़ यज्ञ कर्मकांडों के निर्देशों से आप्लावित थी, वह अब तत्कालीन समाज में हुई नई वैचारिक क्रांति के तत्वों के निर्देशन, नवीन अनुष्ठानों के आरोपण और नूतन उपासना विधियों के अनुकरण से निमज्जित हुआ। जैन और बौद्ध मत का प्रसार हिंदू धर्म और आचरण पद्धति के सर्वथा विरुद्ध था तथा हिंदू धार्मिक क्रियाओं और व्यवहारों पर कठोरतम आघात था। निश्चय ही जैन और बौद्ध धर्म की दार्शनिक पद्धति उपनिषदों के तत्वों और उनके आध्यात्मिक विवेचन से अनुग्रहित थी, तथापि तत्कालीन समाज की साधारण जनता को इन मतों ने नवीन आशा और विश्वास प्रदान किया। कठोर हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों, कठिन कर्मकांडों और जटिल याज्ञिक क्रियाओं से तत्त समाज उब चुका था तथा उसके सदस्य असंतुष्ट और विकल हो चुके थे। हिंदू समाज अब अनियंत्रित, उन्मुक्त और स्वतंत्र वातावरण की अपेक्षा करता था। उसकी इस अपेक्षा की पूर्ति जैन और बौद्ध सिद्धांतों और व्यवस्थाओं ने की। हिंदू धर्म और समाज के विरुद्ध जैन और बौद्ध मतों की यह प्रतिक्रिया ही नहीं थी, बल्कि तत्कालीन समाज की आवश्यकता भी थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि जैन मत की तुलना में बौद्ध मत समाज के लिए अधिक ग्राह्य और सामाजिक हुआ। इसका प्रधान कारण यह था कि उनमें जैन मत की तरह शरीर और आत्मा को घोर कष्ट देकर शांति प्राप्त करने का निर्देश नहीं था। यद्यपि दोनों मतों में भिक्षु और संघ की व्यवस्था की गई थी, जो हिंदू मत के विपरीत थी। बौद्ध मत में मध्यम मार्ग अपनाने की दीक्षा दी गई ताकि सभी व्यक्ति सहज और कुशलतापूर्वक इसे अपना सकें। डॉक्टर रोमिला थापर का यह अभिमत है कि बौद्ध लोग मनुष्य और समाज से संबंधित विचारों के लिए अपने पूर्ववर्ती चिंतकों से कहीं अधिक विश्लेषणात्मक हैं, किंतु वे यह नहीं अनुभव करते थे कि सामाजिक ढांचे को पूर्ण रूप से पुनर्व्यवस्था के लिए निर्देशित किया जाए। इस स्थिति में बौद्ध मत ने अपनी ऐतिहासिक भूमिका में सामाजिक प्रतिरोध को स्पर्श किया था, किंतु इसके आगे वह नहीं बढ़ा। संभवतः यह इसलिए हुआ कि बौद्ध मत सामाजिक प्रतिरोध करने वाले तत्वों को बौद्धिक प्रोत्साहन देने में असमर्थ था। इस युग में स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले किसानों का वर्ग भी विकसित हो चुका था। कबीले के अंतर्गत पशुचारी वैश्यों के समूह में ऐसे कृषकों का उदय हो गया जिनकी दृष्टि में कबीले का कोई स्थान नहीं था। वैश्य व्यापारियों का प्रभाव बढ़ गया था। वे श्रेष्ठी के रूप में ख्यात हो रहे थे तथा राज्य प्रशासन में भी सहयोग प्रदान कर रहे थे। गहपति नामक शब्द तत्कालीन समाज में अवस्थित नए वर्ग की सूचना देता है तथा संपत्तिशाली सदस्य की व्यवस्था की ओर इंगित करता है। परिवार में ऐसे गृहपति का महत्व था और उसके निर्देश को परिवार के सदस्य मानते थे। यह गृहपति पितृतंत्रात्मक परिवार की भी व्यंजना करता है और गोत्र को भी अभिव्यक्त करता है। इसके साथ साथ समाज में आहार उत्पादक वर्ग की भी व्यापकता हुई। साथ ही हाड़ी जैसे दास वर्ग का भी उदय हुआ जो केवल अपने पेट का भरण कठिनाई से कर पाता था। वस्तुतः कबीले का जीवन बहुत कुछ पूर्ववर्ती क्रियाकलापों के अनुसार था। वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध जैसे क्षत्रियों के विरोध और उनकी प्रतिक्रिया के कारण ब्राह्मण जैसा वर्ग अपने पौरोहित्य कर्म को सुरक्षित रखने में ही संघर्षरत था ताकि उसकी जीविका चलती रहे। इसके लिए वह नए पूजन आडंबर के अन्वेषण में था। वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध ने क्षत्रियों को ब्राह्मणों की तुलना में उच्च और प्रथम स्थान ग्रहण करने की व्याख्या की तथा ब्राह्मणों को द्वितीय स्थान प्रदान किया। महात्मा बुद्ध ने सामाजिक आर्थिक ढांचे के रूप में जाति और उच्च जाति द्वारा अपने पूर्वजों से प्राप्त की हुई शुद्धता के बीच कोई अंतर नहीं स्वीकार किया था। आचार नीति को प्रकट करने की यह व्यक्तिगत इच्छा थी। अतः क्षत्रिय ब्राह्मण श्रेष्ठी यानी कि सेठ या वैश्य और कृषक से संयोजित समाज की निरंतरता उस युग में बनी। सामाजिक भेद की कठोरता शिथिल पड़ रही थी तथा राजकोष समाज में व्यवधान और लूटमार करने वालों के प्रति यथोचित व्यवहार करने का निर्देश दिया जा रहा था। औपनिषदिक युग की तरह इस युग में भी ज्ञान और दर्शन की दिशा में उच्च क्षेत्र क्षत्रिय जाति के व्यक्तियों ने समाज का नेतृत्व किया तथा उसे दिशा निर्देश दिया। ब्राह्मण समाज की सूत्रबद्ध जटिल व्यवस्थाओं और कठोर कर्मकांडीय व्यवहारों का साधारण समाज के सम्मुख अनावरण किया गया तथा उसके वास्तविक स्वरूप को व्यक्त किया गया। बौद्ध ग्रंथों, जातकों तथा जैन ग्रंथों से इस युग की ग्रामीण और नगरीय अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक संगठन पर नवीन प्रकाश पड़ता है। इस युग के औद्योगिक विकास के उद्भव ने सामाजिक विकास के मूल्यों को परिवर्तित किया। जिन लोगों के पास पशु और भूमि जैसी संपत्ति नहीं थी, उन्होंने अन्य लाभकारी व्यापार को अपनाकर धन अर्जित करने का प्रयास किया तथा फलस्वरूप समाज में आदर प्राप्त किया। धीरे धीरे व्यक्तिगत संपत्ति की सीमा भी बढ़ती गई, साथ ही नागर संस्कृति का भी उत्कर्ष हुआ, किंतु वास्तविक रूप से ग्राम में शक्ति और नियंत्रण या तो राजनीतिक मुखिया का था या धनी व्यक्ति का। ब्राह्मण को प्रथम स्थान केवल नाम मात्र का प्राप्त था, इससे अधिक उसका कुछ भी महत्व नहीं था। सिद्धांत जैन और बौद्ध मतों ने धार्मिक क्षेत्र में किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं उत्पन्न किया। निसंदेह समाज में यह परिवर्तन का सूत्र था जो ब्राह्मण विरोधी मतों के माध्यम से प्रारंभ हुआ था और समाज को नियंत्रणहीन दिशा की ओर उत्प्रेरित कर रहा था। 518 ईसा पूर्व के लगभग सिंधु नदी के पश्चिम का भूभाग पर्सिया के लोगों से पुनः पादाक्रांत हो गया।